का आंशिक रूप से या स्थूल रूप से त्याग करने का नाम ही अनुव्रत है, और जब पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है तो उसे ही महाव्रत कहते हैं। महाव्रतों का पालन करने वाले मुनि महाराज हैं, अनुव्रतों का पालन गृहस्थ श्रावक करते हैं। श्रावक के इन पांच अनुव्रतों के साथ सात और भी व्रत होते हैं, जिनमें तीन गुण व्रत होते हैं, चार शिक्षा व्रत होते हैं। इन्हें इन सातों को सील व्रत भी कहते हैं। दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। श्रावक के दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये तीन गुण व्रत हैं, और चार शिक्षा व्रतों में सामायिक प्रोषधोपवास भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस तरह से ये चार शिक्षा व्रत हैं। दिशाओं की सीमा कर लेना, उसके बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा निश्चित कर लेना, ये दिग्व्रत कहलाता। और जो दिग्व्रत में बड़ी सीमा करी है उसको और चार महीने, दो महीने, दस दिन, पंद्रह दिन, अष्टमी चतुर्दशी के लिए उसको और सीमित कर लेना कि भाई अपने शहर से ही बाहर नहीं जाएंगे, अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये कहलाता देश व्रत। और निष्प्रयोजन पापकारी नहीं करना, गृहस्थ के जीवन में प्रयोजनवश पापकारी करना पड़ते हैं वो जुदी बात है कि हमको खाना बनाना है तो आग भी जलाना पड़ेगी, लेकिन अब खाना भी नहीं बनाना और व्यर्थ में आग जला रहे, ये तो निष्प्रयोजन पापकारी नहीं करना, ये कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। वो पांच प्रकार का हो सकता, दूसरे के बारे में खोटे विचार करना बैठे बैठे, इसको अपध्यान कहते हैं। पाप को बढ़ाने वाली क्रियाओं का उपदेश देना, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। अपन कुछ कर ही नहीं रहे, दूसरे को व्यर्थ में उपदेश दे रहे हैं तो इससे तो पाप बढ़ेगा है, और निष्प्रयोजन है, आपका कोई प्रयोजन भी नहीं है, और बिना प्रयोजन के फल फूल पत्ती इत्यादि तोड़ फोड़ करके नष्ट कर देना, पानी अधिक बगरा देना, जरूरत ही नहीं थी, बिजली जली है तो जली रहने दो, पंखा चल रहा है तो पंखा चलने दो, ये निष्प्रयोजन। जब अपन ओ के नीचे बैठी, जब चला हुआ तो बात अलग है, मनो चल रहे हो कछु काम कोई नहीं है तो का मतलब निष्प्रयोजन, ये प्रमादचर्या कहलाएगी। हिंसा दान, ऐसे उपकरण देना दूसरे को जिससे कि हिंसा होती है, अस्त्र शस्त्र इत्यादि दे देना, अग्नि दे देना, अब मालूम है कि वो अग्नि से और आग लगाएगा तो न देना चाहिए उसको। व्रती व्यक्ति जो है संभल के देता है, विचार करके देता कि भैया इसका सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। और अशुभ श्रुति, दूसरे की बुराई सुनने में रुचि लेना, ये व्यर्थ का काम है, इससे कोई सार नहीं होने वाला। अपनी को बुराई कर रहे हो वे तो अच्छे से सुन लो कि भैया बता दो का क्या चीजें हैं, गलती हमारी बात तो सुनबे की रुचि नहीं है, दूसरे की काका गलती है भी जल्दी सुनाओ, तो ये अनर्थ दंड है, इससे अपना कोई प्रयोजन नहीं होने वाला सदने वाला। तो प्रयोजन से रहित ये पापकारी छोड़ देना चाहिए। चार शिक्षा व्रत कौन से हैं, पांच पाप छोड़ करके और समतापूर्वक भगवान का स्मरण करने बैठ गए, ये हो गई सामायिक, सीधी सच्ची बात। और प्रोषद उपवास, पर्व के दिन में उपवास कर लिया, नहीं है शक्ति तो एक आसन इत्यादि कर लिया, प्रोषद उपवास कहलाएगा। भोग उपभोग का परिमाण कर लो, भैया सामग्री तो लेना है खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, लेकिन आज इतनी इतनी लेंगे, अष्टमी चतुर्दशी है, कम से कम भोग उपभोग की सामग्री रखेंगे, ये भोग उपभोग परिमाण हो गया। अतिथि संविभाग, पहले मुनि महाराज को आहार दे करके और फिर बाद में भोजन करेंगे, इस तरह से विचार कर लिया, ये अतिथि संविभाग नाम का, अपने सामग्री में से उनको भी दे दिया और फिर अपन ने उसको ग्रहण कर लिया, ये अतिथि संविभाग है। चार प्रकार का दान देना, इसी के अंतर्गत सब आ जाएगा। हमने आपको संक्षेप में बता दिया, श्रावक के बारह व्रतों का पालन करके आखिरी में संलेखना लेनी चाहिए। कषाय और शरीर को क्रम क्रम से कमजोर करते जाना है, हाँ, शरीर को भी धीरे धीरे खुराक कम दे रहे और कषाय भी धीरे धीरे मंद करते जाते हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं जिसमें चलती हैं उससे कहते हैं संलेखना, या कि जीवन का अंत समय निकट जानकर समता पूर्वक अपनी देह को छोड़ देने का नाम संलेखना है। इससे सरल परिभाषा नहीं बना सकते भाई। और कब ली जाती है? जब चाहे नहीं ले जाती, जब मरण का समय निश्चित आई कि आप कैसे पता लगेगा? कहते कि अब जंगल में थे और सिर आ गया, अब तो तय ही है मरण। उपसर्ग आ गया हाँ, या कि अब भूकंप आ गया, अब क्या मरण तो निश्चित ही है। ऐसी स्थिति हो गई कि ऐसी ऐसी विपत्ति आ गई जिससे बचना संभव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, या कि ऐसा रोग हो गया जो कि असाध्य है, अब ठीक ही नहीं हुई है, डॉक्टर ने कह दी कि कैंसर होगा, कैंसर होगा, ठीक है तैयारी हमारी शुरू, बढ़िया रहो, पता लग गई 2-3 साल में चले जाए, शांति से अपनो इंतजाम कर रहे, जावे को सजा रहे, अपनो बटुआ बटुआ लगा लो सब काका ले जाने उसे, बढ़िया से अवसर मिल गया उसमें, नहीं तो अवसर ही नहीं मिलता, पता ही नहीं लगता। सर लिखना ऐसी तरह की चीज है। और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे का तो कोई उपाय नहीं है, अब कछु फिर से तो बचपन नहीं आएगा, अब तो बुढ़ापा आ गया, सो ये तो हम जब तक है जब तक जीवन चलेगा, आंख कमजोर हो गई, इस तरह जो भी है, और दुर्भिक्ष पड़ गया, विपत्ति है, अब कैसे कैसे खाने पीने की तो स्थिति नहीं बन रही, ऐसी स्थिति में ये सब स्थितियां हैं जिनमें की मरण निश्चित अवसंभावी है। ऐसी स्थिति का विचार करके, शरीर छूटता जान करके, और समता पूर्वक शरीर को छोड़ देने का नाम संलेखना है। अब जो है जितने अपन ने व्रत लाए हैं उनमें काका टूट फूट हो सकत, उसका अपन को व्रति को विचार करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि देखो ऐसी गलती हो सकती है, ऐसी गलती होने पर प्रायश्चित लेना, और जहां तक हो सके गलती से बचना, सम्यक दर्शन के अतिचार। अतिचार का मतलब है प्रमादवश लगने वाले दोष, और पूरी तरह से व्रत के भंग हो जाने का नाम क्या है? अनाचार है। और अतिचार के मायने हमारे असावधानी से कोई दोष व्रत में लग जाना, ये हो गया अतिचार। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्वाह सम्यक दृष्टि रतिचारहा। सम्यक दर्शन तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, और सात तत्वों पे भी श्रद्धा है, आपा पर का भेद विज्ञान भी है, सब बातें हैं, लेकिन बीच बीच में धर्म का जो मूल आधार है, सूक्ष्म और अतीन्द्रिय तत्व है, उसके बारे में संदेह हो जाना कि क्या पता कैसा है, ऐसी शंका न करना, नहीं तो सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। और धर्म करते हुए उस धर्म के फलस्वरूप संसार की आकांक्षाएं कर लेना, ये भी आकांक्षा, ये भी दोष है। सम्यक दर्शन भंग ने होगा, लेकिन दोष तो लग गया, अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो एक दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है आकांक्षा, धर्म ध्यान के द्वारा तो संसार की क्या आकांक्षा करना, हो जाती है, मगर उसको दूसरे रूप में कहो। अपन जैसे जाके कहते के महा भगवान हमारो तनक अच्छे से घर गृहस्थी चलन लगे, ऐसी जाके न कहो एक ही जगह जाको कि भगवान असाता की वजह से हमारी घर गृहस्थी गड़बड़ा गई है, कर्मों की निर्जरा हो गए और पुण्य को अर्जन हो गए, सुहाओ काम ठीक से चलन लगे, इतनों का में का दिक्कत, वो की जगह जाको ना, इसमें कोई दोष नहीं है। और सीधी जाके कह दे कि अब आप ही हो, अब जो कछु भी करने हैं अब, तो भगवान थोड़ी कर लिया है, हम अपने परिणाम अच्छे बनाएंगे तो हमारी असाता कम हो जाएगी, तो सब काम सरल जाएगा, ऐसा तो हम विचार करना चाहिए, तो दोषने लगेगा। और विचिकित्सा, विचिकित्सा में बड़ी मजे की चीज पढ़ने में आई, सामान रूप से तो पंजा कहते के मुनि तन मलिन देख घिनावे हैं, निर्विचिकित्सा हो गई, मुनियों के शरीर को देख के मलिन अपने भाव ने बिगाड़ना चाहिए। बहुत अच्छी चीज लिखी कि विचार भेद होने पर तर्क संगत या आगम संगत बात को न मान करके अपनी टेक चढ़ाना, ये विचिकित्सा, ये सम्यक दर्शन का दोष है। देखो विचार भेद होने से तर्क संगत आगम संगत बात है, फिर भी अपनी जिद पर कायम रहना और दुराग्रह करना, असित आग्रह करना, आप आगम और संयम के विषय में घृणा भाव उत्पन्न कर देना दूसरे के भीतर और अपने भीतर भी, ये विचिकित्सा है। इसमें अपन बहुत इसमें सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। आप तागम और संयम और संयमी के प्रति घृणा उत्पन्न कर देते कि का धरो संयम में कछु नहीं। इससे बहुत सावधानी, इससे अपने सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। और अन्य दृष्टि प्रशंसा, मोक्ष मार्ग में स्वयं भी स्थिर नहीं रहना, और कोई उल्टे रास्ते पे चल रहा है तो मन ही मन उसकी प्रशंसा करना, ये कहलाती है अन्य दृष्टि प्रशंसा। और अन्य दृष्टि संस्थाओं क्या कहलाता, विपरीत मार्ग में जो गुण विद्यमान है ही नहीं, खोटे रास्ते पे चलने वाले के गुणों का वचनों के द्वारा प्रशंसा करना। अब मन ही मन में कर रहे थे, अब वचनों से भी कर दी, तो इससे हमारे सम्यक दर्शन में दूषण लग जाएगा। अरे मिथ्या मार्ग की प्रशंसा क्यों करना, वितराग मार्ग की प्रशंसा करो, ने मन ही मन और ने वचनों के द्वारा दोनों। जब जान रहे कि ये मिथ्या मार्ग है, हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, उसका समर्थन क्यों करो, उसकी प्रशंसा क्यों करो, नहीं तो अपने उसमें दोष लगेगा। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रम, व्रत माने पांच अनुव्रत और सात सील, मतलब तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत, ऐसे बारह व्रतों में पांच पांच अतिचार लगते हैं, इसकी चर्चा कर रहे। अहिंसा व्रत में कौन से अतिचार लग सकते, दोष लग सकते हैं, बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधा, बंध गाय बैल इत्यादि को बंधन में डाल दिया, त्यागी व्रती गाय बैल इत्यादि को घर में रखेगा तो बांधेगा, लेकिन बंधन ऐसा डालेगा कि वो अपने निकाल सकें और भाग सकें, पानी पीना हो तो बंधन छोड़ करके पानी के लिए जा सकें, घास खाने जा सकें, हाँ ऐसा विवेक अपने आप रखते थे पहले के लोग। इतना ही ढीली रस्सी बांधते थे कि भग भी न पावे, लेकिन अगर आपत्ति विपत्ति आ जावे तो छोड़ करके और भाग सके, ऐसा नहीं तो दोष लगेगा, बंधन हो गया। और बध, बध के मायने मालूम, अब जान से तो नहीं मारा लेकिन लाठी से पिटाई कर दी, ये क्या है, हाँ ये भी है उसमें, बध कहलाता है, उसको पिटाई कर दी, उसको लाठी से मार दिया या कि धक्का दे दिया, चांटा मार दिया, ये सब बध में शामिल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वृत्ति की चर्चा चल रही, छेद नाक कान छेदन करवा देना, वो जो बिटिया लोगों के अपन नाक कान छेदते वो नहीं, उसमें तो वो पहनेंगे आभूषण इत्यादि, वो उसकी दृष्टि छेदने की थोड़ी, आभूषण पहनने की है, लेकिन जो जो जानवरों के लिए उनके नाक में छेद करके और वो डाल देते हैं, फिर उनको खींचते हैं तो बहुत वेदना होती उनके लिए उसमें, क्योंकि नाक में डली रहती वो, आपके नाक में कोई थोड़ी ये मार देवे तो उसके, तो उसमें से नाक में से डाल देते हैं छेद कर करके उसमें, उसको नाथना कहते हैं, फिर भाग नहीं पाता वो, जरा ऐसा पकड़ लेते तो खड़ा हो जाता वहीं पर बैल इत्यादि, तो ये नहीं करना। अति भारारोपणम, उसकी शक्ति से ज्यादा उस पे बोझा न लादना, और अपने घर में नौकर चाकर हैं उनसे भी ज्यादा काम न लेना, और इतना ही नहीं अपनी जितनी शरीर की शक्ति है सु शरीर से भी घर गृहस्थी को उतना ही काम करना जितनी शक्ति है, ज्यादा करो तो अति भारारोपण अपने ऊपर भी आ है, दूसरे पे नहीं अपने ऊपर भी, शक्ति तो है नहीं है और शक्ति से ज्यादा लगे हैं दिन भर काम में, ऐसा भी नहीं, अति भारारोपणम है। और अन्न पान निरोध, गाय बैल इत्यादि को भूल गए के पानी दिया के नहीं, घास डाली के नहीं, नौकर चाकर खो, अब लगो है बिचारो, बारह बज गए, एक बज गए, अब चले जाइए जो थोड़ा और काम है वो, अब उसको भूख लगी है उसके अन्न पान का निरोध कर दिया, ये स्वयं भी अब ऐसे लगे हैं दुकानदारी में, वो डिब्बा ले आन के धरो है सो अब वो निकार के खावे की फुर्सत नहीं है, भाई अब दुकानदारी चल रही जी, अन्न पान का निरोध स्वयं का भी करना और दूसरे का भी करना, ये सब अतिचार हैं। अहिंसा का पालन नहीं होगा इससे, और सत्यानुव्रत का पालन करने वाले को विचार रखना चाहिए। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र ढेदा, सन्मार्ग पे लगे हुए व्यक्ति को गलत मार्ग पे लगा देना मिथ्या उपदेश है, वो तो व्रत ले वो चाह रहा हो तो, और तुमने वो खो भुड़ के आ जाओ बुंदिल में खंड में कह के भुड़ के आ जाओ, मतलब वो खो दूसरे वो खो गड़बड़ में डाल दिया उसको, हरि का धरो, ऐसा ये मिथ्या उपदेश है। और रहो व्याख्यान, किसी की कोई गुप्त बात थी जो वो बताना नहीं चाह रहा था, वो सबको उजागर कर दी। ये जो है सत्यानुव्रत में दोष लग गया, किसी के बाबत झूठा साचा लिख करके उससे जालसाजी करना, ये सब कूटलेख क्रिया कहलाती है। फॉरगेटिंग, न्यासापहार, धरोहर कोई रख करके भूल गया तो उसको स्वयं पचा गए बताई तक ने, अगर उसने कमती बताई तो कह ले हाँ इतनी हती ले जाओ, सच्ची नहीं बोले आप, झूठ बोल दिया, सत्यानुव्रत का दोष लग गया। और साकार मंत्र भेदा, किसी दूसरे का अभिप्राय जान करके ईशा बस दूसरे से कह देना, जबकि उसने कहा नहीं है, अकेले अभिप्राय जान करके और आपने दूसरे से उसके बारे में कह दिया, ये भी जो है आपके व्रत में दोष लग गया। स्तेन प्रयोग तदा रता धान विरुद्ध राजाति क्रमहीनादिक मानून मान प्रतिरूपक व्यवहारा, अगर अचोरी व्रत धारण किया है तो इससे बचना चाहिए। स्वयं तो चोरी नहीं कर रहे लेकिन तुम तो चोरी करो, ऐसा कह देना, कछु नहीं हो हमने क्या करो, तुमने थोड़ी करो, तुम तो कर सकत, लड़कों बच्चों से कह रहे कि तुम तो कर, तुमने थोड़ी क्या करो, तुम तो कर सकत, इतना तो करो ही चाहिए, ऐसा तो ये हो गया। इस तीन प्रयोग तदा हरता दान, चोरी का सामान खरीद करके बेचना, स्मगलिंग वाली चीजें बेचना, ये सब व्रती व्यक्ति को दोष लगेगा। विरुद्ध राजातिक्रम, एक राज्य की चीज दूसरे राज्य में कमती में बिक रही है या ज्यादा में बिक रही, तो ज्यादा वाली वहां बेच दी, वहां से कमती में खरीद करके यहाँ लाके बेच दी, ये सब विरुद्ध राजातिक्रम है। हाँ, जैसी राज्य आज्ञा है उसके विरुद्ध चलना, टैक्सेशन की चोरी वोरी सब इसी में आ जाएगा मामला। पहले कितना ध्यान रखते थे, देश का भला करने वाला व्रत है ये, अधिकांश व्रत देश का भला करने वाले व्रत हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जैनी तो अपना अपना कल्याण करते हैं और बाकी तो किसी की चिंता नहीं करते, देख लो जरा इसमें कितनी बातें लिखी हैं, अगर ऐसे व्रतों का पालन करेंगे तो किसका, सबका भला है इसमें, प्राणी मात्र का। हीनाधिक मानून मान, माप और तोल के बांट कम बढ़ती नहीं करना, ये क्या है, ईमानदारी सिखा रहे हैं, नहीं तो चोरी का पाप लगेगा इसमें। और प्रतिरूपक व्यवहारा, मिलावट नहीं करना। हमने एक जैनी आदमी को देखा था मंदिर के बाजू में रहते हुए, उनकी छत मंदिर से लगी थी, सुबह अपने से शुद्धि करवावे ले गए थे, अब स्थान को नाम नहीं बते हम, भी बेचते मालूम क्या बेचती थी, बांट करके पीस के बटुआ बना के और हल्दी बेचते थे। अब हल्दी के पैकेट बटुआ, वो बटुआ कह रही हमने, अब आप भूल जाते भाई पैकेट, तो पैकेट में जो है वो उसको पैक करके बेचते थे 50 ग्राम 100 ग्राम। अब उनके यहाँ पर जब हम शुद्धि करने लगे तो वहां पर पीली मिट्टी का ढेर भी लगा था, हमने कहा जेकाय के लिए थोड़ी थोड़ी उसमें मिलाई जाती है पीली मिट्टी, बताओ आप 1 किलो पीछे 50 ग्राम मिला दी, पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसी जो है बहुत सी मिलावट करते हैं अपन, वो हमने को उदाहरण दे दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। के देखो जो है कौ खूब व्रती हो, ऐसा हो जाता कई बार, इससे जो है अच्छा संदेश नहीं जाता। के देखो रात्रि भोजन को त्याग है, कौ बहुत बड़े बड़े त्याग हो, कौ जो बेईमानी करत हो, तो इसमें जो हंसी होती धर्म की। इसलिए कह रहे हम आपसे कि अपने को व्रती व्यक्ति को इन बातों से बचना चाहिए कि अपन ने व्रत दे लिया, अपने व्रतों में दोष तो लगे ही लगे, वो बाकी लोग क्या सोचेंगे, कह रही जी ऐसा करते हैं व्रती हो करके। इसलिए पर अव्रती तो यही उसको वो तो बिचारो मैंने अभी व्रत ही नहीं लगे सु, वो तो करे सु कछू मैंने वो खोरी दे सकत, पाप तो उसको भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये जितनी चीजें कही जा रही व्रती को तो व्रत में दोष लगेगा, वो अव्रती को तो पाप ही पाप है ही, उनको तो कछु बात ही नहीं है, जो उनने व्रत ही नहीं लगा वो कहा वो को तो सब टके शेर बाजी टके शेर खा जा उसको क्या है, व्रती को सिर्फ अल्प दोष है, उसे पाप क्यों लगेगा, उसने तो व्रत लिया है, व्रत का पालन करने से पुण्य का अर्जन कर रहा है, हैं? ये भी विचार है, इस पे हम आपसे अलग से विचार कर हैं, नहीं तो हम आपको समझा के छोड़ हैं, नहीं तो फिर बीच में नहीं छोड़ा था हम, और टाइम है बहुत कम क्योंकि हम जो भी बोलते हैं तो वो फिर सोच के ही बोलते हैं, कभी गलती भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, एक्सक्यूज कर लेता हूं मैं। पर देर लग जाएगी। पर विवाह करनी त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग कीड़ा काम तीब्रा विनिवेशा। अपने घर गृहस्थी के ब्याह शादी करवे को तो कर्तव्य है, लेकिन दुनिया भर के पास पड़ोस के ब्याह करवा रहे तो ये दोष है। सीधा सीधा पर विवाह करनी और इत्तरिका गमन, दूसरे के द्वारा विवाहित जो है उससे संबंध स्थापित करना है, ये कहलाएगा पर इत्तरिका गमन। और इत्तरिका अपरिग्रहिता मतलब विषय इत्यादि के यहां पर जाना, उससे उनसे संपर्क रखना, जाना तो नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति है जाएगा कायक हो, लेकिन संपर्क रखना। जैसे के आचार्य श्री कहते हैं कि शराब की दुकान पे बैठ के दूध पियोगे तो कौन मानेगा कि तुम दूध पी रहे थे, बताओ है? तो इसलिए इतना विवेक रखना कि भैया ऐसी लोगों की संगति में न रहना जिससे कि अपने चारित्र में दूषण आ जावे। और अनंग क्रीड़ा परवर्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस वो भी नहीं करना, एक्सेसिव सेक्सुअल पैशंस, काम तीव्रा विनिवेश, ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास गुप्त भाण्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र की सीमा रख ली मतलब उपजाऊ जमीन कितनी रखना है, एक बार उसकी सीमा रख ली लेकिन बाद में लोभ के वशभूत होकर के सीमा बढ़ा ली। कैसे बढ़ा ली? 100 एकड़ रखी थी पूर्व की तरफ, अब पता लगो कि जब पश्चिम की तरफ 25 एकड़ अच्छी उपजाऊ मिल रही, सुखन लगे 25 तो कैसे घटाएं ले इतने 25 बढ़ाएं ले, जा आ गई बेईमानी। रखी तो 100 एकड़ की तो 125 नहीं करी लेकिन उपजाऊ दूसरी मिल रही थी उसको 25 लेके ये वाली, ये दिशा दिशा में, हाँ अगर आपने दिशा में सीमा बदल जिस दिशा में ली है उतनी ही उसका उपयोग करना, नहीं तो लोग के वशभूत होकर के ऐसा सीमा बढ़ा लेंगे। दूसरी तरफ सीमा बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली आपने, एक तरफ की भले ही घटा ली दूसरी तरफ की बढ़ा ली, वो नहीं। वास्तु मकान उसकी सीमा नहीं बढ़ाना। और सोना चांदी हिरण्य स्वर्ण मतलब सोना चांदी रुपए पैसा जितना रखा है उससे ज्यादा लालच में नहीं पड़ जाना। धन धान्य का मतलब होता धन मतलब गाय इत्यादि कहलाता, गाय भैंस उनकी सीमा नहीं बढ़ाना। और धान्य का मतलब कहलाता ब्रीही आदि चावल गेहूं इत्यादि स्टॉक करके नहीं रखना, जितनी संख्या रखी मान लो 10 बोरे रखी है कि साल भर के लिए 10 बोरे काम आती है, अब कभी जो है लालच बस कि 15 रख लो ऐसा नहीं करना। जितने दासी दास नौकर चाकर रखे हैं उनकी संख्या न बढ़ाना और बर्तन और वस्त्र इत्यादि की संख्या न बढ़ाना, ये हो गया परिग्रह। पर अगर इनकी संख्या बढ़ा लोगे तो ये 5 अति 4 लग जाएंगे, दोष लग जाएगा। ऊर्ध्वाधस्तरीय व्यतिक्रम क्षेत्र वृत्ति स्मृत्यंतराधानी, दिग्व्रत के अति 4 कौन कौन से हैं? अब पहले सब दिशाओं की सीमा कर ली फिर किसी लालच बच, लालच से ही होते सारा काम और कुछ नहीं। ऊपर सीमा बढ़ा ली, अपना देखा कि ऊपर जाने से काम ज्यादा बन रहा तो सीमा बढ़ा ली, और नीचे जमीन के अंदर अब 3 किलोमीटर पे निकलता है गोल्ड, कोलार गोल्ड माइन है उसमें 3 किलोमीटर नीचे जाकर के सोना निकलता। अब कोई माइन ले ली, अब खदान ले ली तो उसमें उतने नीचे खोदेंगे, पहले तो सीमा रखी थी 100 फिट की और अब खोद रहे हैं 1500 फिट नीचे, तो ये सब जो है लालच के वशभूत। कहते नीचे की सीमा आपने भंग कर दी, तिर्यक आजू बाजू जाने की सीमा बढ़ा ली या कि क्षेत्र जो रखा था उसको ही बढ़ा लिया। और स्मृति अंतराधानी फॉरगेटिंग द बाउंड्रीज, जितनी सीमा करी थी भूल ही गए का पता कितनी करी थी ले, तो ये भी दोष है, अतिचार लगेगा। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा, देश व्रत है, देश व्रत में क्या किया मान लो अपन ने, अपने घर से बाहर ने जाएंगे, अब अपने घर से बाहर ने जावे को तो नियम ले लो, फिर क्या किया अपनी सीमा में रह करके दूसरे से सीमा से बाहर को काम करवा लो, अपन तो नहीं गए तो ये दोष लग गया। या कि नौकर को आज्ञा दे करके अपना काम करवा लिया कि तुम तोते जा ही रहो जो भी हमारा करके ले आना, प्रेष्ट प्रयोग है। और शब्दानुपात सीमा से बाहर काम लेने के लिए किसी को आवाज दे दी, अब हम कमरा में बैठे हम बाहर जा नहीं सकते, हमारी सीमा है और हमें जो काम है अरे सुनो तो, या कि ताली बजा करके इशारा करके खांस करके बुला लिया उसको कि इधर आओ हमारा ये काम है, ये सब शब्दानुपात। जब अपन ने सीमा कर ली अब एक दिन के लिए तो सीमा करी के बैठे हैं शांति से कहीं नहीं जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में रूपानुपात कुछ बोला नहीं, लेकिन खिड़की में से जा करके और अपना रूप दिखा दिया कि सुनते ही नहीं है तुम्हारे, तो ये सारा समझ गए वो गरीब देख देख रहे हैं, बुला रहे हैं वहां से आगे बढ़ते। अरे सब बेईमानी जानते थे आचार्य महाराज, ये सब जानते कि क्या क्या कर सकते आप इसमें, वो सब लिख दिया उन्होंने कि कहाँ कहाँ फॉल्ट्स हो सकते, कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं हमारी, सब लिखी पुद्गल क्षेप। अगर फिर भी कोई नहीं सुन रहा तो कोई चीज सामान फेंक करके उसको इशारा कर दिया यहां तक हो जाएगा है? ये सब दोष है। कंदर्प कौत कुछ मौखरिया समीक्षा अधिकरण उपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी, ये देश व्रत हो गया, अब अनर्थ दंड व्रत है। अब अनर्थ दंड व्रत में जो है जैसे हंसी से मिश्रित असभ्य वचन नहीं बोलना, ये कंदर्प कहलाता है, वल्गरिटी जिसको कहते हैं, आज तो बहुत अधिक है। टेलीविजन पर दो चीजें बहुत तेजी से दिखाई जाती हैं, वल्गरिटी और नॉन वायलेंस। एक बेटा 20 साल का होने तक, अपने बचपन से लेके 20 साल तक 70,000 हिंसा के दृश्य देखता है और 40,000 असली दृश्य देखता है। ये डॉटा है, इसके भीतर इंप्रेशन पड़ता रहता, इंप्रेशन पड़ता रहता, फिर एक दिन वो भी क्यूरियोसिटी उसके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होती कि मैं भी करके देखूं ऐसा सब, तो करना शुरू कर देता, फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता। ये इसमें आचार्यों ने पहले से रख रखा कि हंसी मजाक में अशुभ वचन नहीं बोलना, और फिर कौत कुछ कुचेष्टा करते हुए, खराब खोटी चेष्टा करते हुए अशुभ वचन बोलना, ये भी अपन जगह जगह सुन लो रस्ते में बहुत आराम से। कौत कुछ मौखरी व्यर्थ बहुत बोलना, गोशिप जिसको कहते हैं, गपशप करने बैठे हुए हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, उधर बाजार में खड़े हैं, चर्चा चल रही, राजनीति की चर्चा चल रही, महाराज के पास बैठे गए राजनीति की चर्चा करने लगे, हाँ सब मंदिर में बैठे तो भी उसी का, जैसे कि नहीं खुने राज्य करने हो पूरो, भी तो बेकार में बैठे हो तो संसद में उनको करण दो, अपन तो निश्चिंत रहो, अपन काहे को व्यर्थ में, कोई प्रयोजन ही नहीं उसका है। असमीक्ष अधिकरण, आवश्यकता का विचार किए बिना ज्यादा कारी विस्तार लेना, चार जने खावे वारे हैं 40 की रोटी विस्तार ली, अब वो क्या करें, पानी गिर गया तो में सो सन गई जाएगा, अब वो बना रहे हैं सवेरे से सन जाता, अब तो नहीं करते ऐसे, अब तो बहुत समझदार हो गए लोग, धर देख भी तो को उसनी उसनाई फ्रिज में रख दे भी, और हिंसा करेंगे ज्यादा नहीं कर नहीं मानो है मालूम, हम देख सब देखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है उस समय नहीं चले थे ये सब, फ्रिज व्रिज नहीं चले थे, न टेलीविजन था, हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते कि कम से कम था ही नहीं उस समय से, उन्हें देखे ने भौंके, झगड़ा ही नहीं खत्म हो गया, आवाज तो छूटता नहीं, वो एक बार लत लग गई तो छूटती नहीं भैया ये चीजें, फिर बिल्कुल उपभोग उपभोग परिभोग अनर्थक ज्ञानी, आवश्यकता से ज्यादा वस्त्र आभूषण न रखना, जितनी सीमा है उतना ही रखना, उससे ज्यादा रखोगे तो आकुलता होगी, दोष लगेगा अपने उसमें, उसको संभालना पड़ेगा व्यर्थ। योग दिश प्रणिधान आदर स्मृत्यनुपस्थानी, सामायिक करने बैठे हैं लेकिन सामायिक में दोष लग सकते, कैसे, काय दुष्प्रणिधान, सामायिक करते समय निश्चल नहीं रहना, शरीर को हिलाता हिलाते रहना, ऐसे उसे देख रहे हैं हाथ वहां हिला रहे हैं, या कि सामायिक करते समय गुनगुना रहे, ये वचन प्रणिधान है, सामायिक करते समय खोटे विचार कर रहे, जानबूझ के आ जाना अलग बात है, हमने कोशिश नहीं करी बिल्कुल के खोटे विचार आवे, लेकिन आ गए, फिर भी हम सोच रहे कि नमो रंतानम नमो सिद्धानम ने आवे हैं, लेकिन अपनी तरफ से करने लगना, फुर्सत बैठी अब क्या करें, सामायिक में इससे ज्यादा फुर्सत तो और कहीं नहीं मिला तो कहते ये मनोदुष्प्रणिधान हो जाएगा, ये ठीक नहीं,
ये जासू रही,
हाँ, और अनादर किसे कहते,
आंखें में की जासू रही,
हाँ, दोनों में ही पाप का बंद है, सोने में भी और खोटे विचार करने में भी, उस ऐसी सलाह न दे, उत्साह पूर्वक सामायिक न करना, अनुत्साह पूर्वक करना सामायिक, कर तो रहे अब करने पड़ रही मजबूरी में, कहती दोष है ये, और एकाग्रता का अभाव होने से समय भूल गए, कि कब शुरू करी थी, होगा वही ये समय, चलो आधे घंटा में उठ गए। तो कहती है स्मृति अनुपस्थान, ये सामायिक के अतिचार हो गए। अब प्रत्यवेक्षिता प्रमाण जो तो सर्गा दान समस्त्रो क्रमणानादर स्मृति अनुपस्थान आनी, प्रोष तो उपवास ले लिया है, अष्टमी का दिन है और अपन ने उपवास कर लिया, अब शक्ति तो है नहीं यहाँ, अब शक्ति कम हो गई तो काका होएगा सब घसड़ पसड़। हाँ, उसको घसड़ पसड़ कहते हैं, मतलब बिना देखे बिना साफ किए जहाँ तहाँ मल मूत्र इत्यादि या कि अन्न कोई सामान इत्यादि विसर्जन कर दिया, वहीं पर थूक दिया जरे जरा बाजू में जा करके, ये क्या है। हाँ, बहुत सावधानी की आवश्यकता है व्रती के लिए, पहले जमीन शोधन करेगा, पिछी लगाएगा, फिर बाद में थूकेगा, ऐसे नहीं थूकेगा क्योंकि उसमें जीव राशि का घात होगा। ये व्रती के लिए अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणित उत्सर्गा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित आदान, उत्सर्ग हो गया आदान, अब बिना देखे बिना प्रमाचन किए पूजा इत्यादि के बर्तन उठा लिए या कि खिसका लिए, अब हो नहीं रहा हमसे, वो खिसका हो तो खिसका लो, हाँ ठीक है, ये दोष लग गया उसमें। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोक्रम, अब सामखों बहुत थक गए, उपवास में सही है, आठ बज गए, न बिस्तर देखे न कछु और खोले, आँख सी मिची है और वहीं पे जाके सो गए आराम से, ये सब बिना देखे सो दे बिस्तर इत्यादि बिछा लेना संस्त्रोक्रमण, ये भी दोष है। और आवश्यक कार्य करने में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि आज तो हमारा उपवास है, सो हिम्मत वैसे ही नहीं है, सो कोई उत्साह नहीं है उसमें, ये दोष है, अनादर कर दिया आपने। और स्मृति अनुपस्थान, अरे यहाँ चौदह सती हमें ख्याल ही नहीं रही, ले तो काय की व्रति हो, ऐसा भूल हो जाए तो ठीक नहीं है, प्रोषद के समय भूल नहीं होनी चाहिए, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन तो है ही, हमारे मन में चंचलता होना वो भी स्मृति अनुपस्थान है। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषय दुपक्वा हारा, भोगोपभोग परिमाण की सीमा ले ली, अब उसमें दोष कैसे लगते हैं, देखो सचित्त आहार, अब भोगोपभोग की सीमा लेने वाला व्रती है, ये माने प्रतिमाधारी है तो मर्यादा का ध्यान रखेगा कि तीन दिन की पांच दिन की सात दिन की आटे की है, लेकिन मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, मर्यादा समाप्त हो जाने पर सामग्री सचित्त हो जाती है, लेकिन उसको अचित्त मान करके ग्रहण कर दिया, ये सचित्त आहार कहलाएगा। हाँ, मर्यादा के बाहर की सामग्री फिर खाने योग्य नहीं है, लेकिन उसको नहीं बात तो ठीक है, अब ये कई दिन तो भाव तीन दिन की आज चौथे दिन तो है ले लू कछु नहीं, तो ये व्रती व्यक्ति को सावधानी रखना कि उतनी ज्यादा क्यों रखो जिससे बचे हो फिर फेंकने पड़े हैं। सचित्त संबंध अचित्त वस्तु के साथ सचित्त ये नहीं तो वो सचित्त सम्मिश्र नाम का दोष लग जाएगा। अविषव आहार जो कि मादक हो गया है, चलित रस हो गया है, हैं? जिसकी सीमा खत्म हो गई, अब अगर अपन किसी पीतल के बर्तन में और कोई रस रख दो तो पीतल के बर्तन में खराब हो जाएगा कि नहीं, तांबे के में खराब हो जाएगा, फिर वो अब लालच है कि को फेंके सुखा लो, अब फफूंद लग गई सामान में और रो के बाद भी फफूंद हटा करके उसको खा लेती, तो कहती ये सब ठीक नहीं है, अविषव आहार है, उसमें एक्साइटिंग फूड कहलाता, मतलब बिगड़ गया वो। दुष्पक्व आहार, आधा पका ज्यादा पका ठीक से नहीं पका, ऐसा आहार ग्रहण करना या देना ये सब दुष्पक्व आहार कहलाएगा, क्योंकि वो स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, मूंग की दाल कम ती चुरो ही जाए फिर खाई जाए तो बड़ी स्वादिष्ट लगती, कटकरी का हाउ बुंदेलखंड में, हाँ, या कि अच्छी जो है रोटी बहुत जोर से अच्छी सेंक लो थोड़ी खरखरी हो जाए फिर खाएंगे, जी सब जो है सब जानते थे वो, इसमें आचार्य भगवान तो ने लिख दिया कि जी सब व्रती व्यक्ति को इसमें लोलुपता दिख रही कि नहीं, मुख्य बात वो है और कुछ नहीं, लोलुपता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दुष्पक को मतलब ज्यादा पका के खाने में भी स्वादिष्ट हो जाता, कोई चीज कम पकाने से भी स्वादिष्ट मालूम पड़ती, ये है उनका उद्देश्य इस तरह से। हाँ, उसमें और सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालाति क्रमा अतिथि संविभाग नाम का व्रत है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करहिं आहार। अब इसमें दोष लग सकते हैं, कैसे? मुनि महाराज आ गए, सचित्त निक्षेप आहार सामग्री जमीन पे धर गई। अब वो जमीन तो सचित्त है, आपने अचित्ती जी अब गरम गरम गंजी है और नीचे रख दिया आपने, तो देखो उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई। नीचे तो वो ठंडी जमीन थी, उसमें आपने गर्म चीज रख दी कोई, तो कहते नहीं ये, फिर उसको अतिथि को बाद में दे दिया। ऐसा भी नहीं, वनस्पति पत्ते हैं, पत्ते सचित्त हैं, उनके ऊपर कोई सामग्री रख के दे दी, वो भी सब सचित्त निक्षेप कहलाएगा। सचित्त अपिधान क्या है? सामग्री को सचित्त, अचित्त तो सामग्री थी, जीव राशि से रहित थी, प्रासुक कर ली थी, उस प्रासुक सामग्री को दूसरी अब प्रासुक चीज से ढक दिया। हाँ, या तो कोई पत्ते इत्यादि ढक दिया, या अन्य कोई जो अप्रासुक थी चीज, प्रासुक नहीं थी, उस चीज से उसको ढक दिया, तो ये सचित अपिधान कहलाएगा। पर उपदेश अपनी देने योग्य सामग्री को कह रहे कि जब दूसरे की है ले लो आप, ऐसा कह के देना, साधु को दोष तो लगा ही, आपको भी इसमें दोष लगेगा ये। और मास्टरी दान देते समय साधु के प्रति आदर भाव न होना और अन्य दाता के गुणों को सहन न करना। अब उनके दो दिन में आहार हो गए, सो आहार दे भी तो गए, मनो भीतर ही भीतर सोच रहे कहे तुम्हारे जल्दी हो गए, हमारे चार पांच दिन हो गए भाई ना। अब ले महाराज जी हमारे तरफ आते ही देखते ही नहीं है, वो तरफ उतना ही चौका में जो लाइनों भी दे आए, या कि उस दाता से अब तुम्हें तुम दे रहे थे हमें देन दो, अब अच्छी बात है। जबकि ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर आप पधारे, नहीं तो हम आपको बुलाते तो भी नहीं आते, आप बिना बुलाए आ गए, वो तो महाराज जी की वजह से आए, इसलिए आप भी मेहमान हो, आप ही देव हमारे घर में आए, हमें इस बात में संतोष है। हाँ, ये है दाता के गुण देने वाले के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कोई आया तो उसको दुत्कार दिया या उसको नीचा दिखाने का भाव आ गया, ये सब मास्टरी है। इससे जो है दोष लगता अपने व्रत में। कालातिक्रम भिक्षा का समय टाल करके निकल ही नहीं पाए, अरे महाराज निकल गए हम आ ही नहीं पाए ले तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कई बार हो जाता है ऐसा, जल्दी में एक आध बार लगते, दोष हमेशा नहीं लगते, ये ध्यान रखना, ये दोष हमेशा थोड़ी लगेंगे, असावधानी हो जाएगी तो लग जाएंगे, इसलिए सावधानी कह रहे। जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी, ये जो है आखिरी सल्लेखना के कौन से अतिचार लग सकते हैं। अब सल्लेखना ले ली, सल्लेखना ले ली, अब मरण का समय अभी आया नहीं है, लेकिन लोग खूब सेवा सत्कार कर रहे, बढ़िया, खूब जय जयकार हो रही, सल्लेखना ली है तो ऐसा लगता है, कैसा लगने लगता मन में, और जी जाते थोड़े, अच्छी सेवा हो रही। हाँ, जिंदगी भर नहीं भैया, अबे अच्छी सेवा हो रही, और तनक जीवित संशा, जीने की इच्छा हो जाना, या कि अब को ध्यान नहीं दे रहा हो, वेदना बहुत हो रही, कबे मर जाते जल्दी से, मरना शंसा, मरने की इच्छा भी नहीं करना, अधिक जीने की इच्छा भी नहीं करना, जल्दी से मरने की इच्छा भी नहीं करना, और मित्रानुराग, अब और तो सब आ गए हैं, मनो हमारा एक मित्र जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे वो और आ जाते तो उसको देख लेते फिर मर जाते। हाँ, कहती नहीं अब कोई आवश्यकता नहीं है मृत मित्र की, अनुराग की, और सुखानुबंध, अरे जे से हमारे लाने सो तक अतः बिछाओ ये पे डरे, अरे हम डनलप पे सोए हैं। सुखानुबंध पूर्व में भोगे गए भोगों की स्मरण आ जाना और संक्लेश कर लेना आखिरी समय, कहती बहुत सावधानी की आवश्यकता हो, निदान मैं अभी तपश्चर्या करके मरण को प्राप्त करूं तो मुझे स्वर्गों का वैभव मिले, ऐसी आकांक्षा आखिरी समय जागृत हो सकती, सावधानी रखना, इसलिए कहते कि ये दोष लग जाएगा। इस तरह से ये चर्चा दोषों की हुई, आखिरी में दो सूत्रों में दान की चर्चा है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अपने और दूसरे के लिए, इसको बोलते म्यूचुअल बेनिफिट, परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए जो अपनी राशि या अपने धन संपदा या जो भी चीज अपने पास है उसका दान दे देना, ये कहलाएगा वास्तव में उसका त्याग करना, दान कहलाएगा। अपना उपकार क्या होता, अपन दूसरे को देते तो अपना मन प्रसन्न होता कि नहीं, अपने पुण्य का अर्जन भी होता और दूसरे को वो चीज उसके काम आती है। अपन ने सम्यक ज्ञान दे दिया, ये अपन जो जो देते हैं, देखो बैनाड़ा जी आए क्या दे रहे हैं आपको, वो भी एक सदग्रस्त हैं, हैं और अपने जीवन का पालन आचरण कर रहे, अपने आराम से घर गृहस्थी में रह करके, और फिर उसके बाद भी ज्ञान का दान दे रहे कि आओ भैया बैठो और आप पढ़ो, हैं। ये क्या है, सम्यक ज्ञान का दान है। जिसके पास जो है, जिसके पास धन पैसा है वो धन पैसा देता है, जिसके पास धन पैसा नहीं है, ज्ञान है तो अपना ज्ञान देगा किसी के पास। जिसके पास जो चीज है उसका त्याग करना दूसरे के उपकार के लिए, ये सम्यक ज्ञान का दान तो सबसे बड़ा दान माना जाता है, ध्यान रखना। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। अब जो दान में विशेषता काय से आती है ये बताओ, विधि से आती है। चार जने पड़गावे खड़े और चार ही जने बिल्कुल एक सी विधि कर रहे, लेकिन जिसके जैसे परिणाम होंगे वैसा उसको फल मिलेगा। हाँ, नौ प्रकार की नौधा भक्ति है। कई लोग पूजा में डराते हैं, बताओ क्या अपन से नहीं बना, अरे बैठ तो जाओ शांति से, जैसी भी कह रहे उसी रोज दोहरा जाओ, बाद में सही। उनने जलम कही, अपन ने दो मिनट बाद कही जलम, आओ ठीक। अब मालूम ही नहीं है कि जलम कहना है, तो थोड़े गौर से सुनते रहे। सबको शामिल, उस प्रक्रिया तो पूरी कर रहे लेकिन उसमें मन से शामिल नहीं है, तो उसका लाभ कम मिलता। तो कहते कि विधि जैसी जैसी विधि है उस विधि से दान दिया जाएगा तो ज्यादा पुण्य का अर्जन होगा, और विधि पूरी नहीं की जाएगी तो कमती होगा। जो द्रव दिया जा रहा है, देने वाली द्रव कैसी है, उसकी विशेषता कौन सी है, जिस आहार के देने से महाराज के धर्म साधन में और आसानी हो, उनका धर्म ध्यान अच्छे से हो, ऐसी चीज देना है। ये द्रव की विशेषता है जिससे उनको लाभ पहुंचेगा उनके धर्म ध्यान में। ऐसा नहीं कि आराम से, माने क्या भैया वृत्ति है, हम एक उदाहरण देते भैया वृत्ति का हमेशा, कि महाराज के पांव दबाओ, उनकी अच्छी सेवा करो, मनो काय से करो जिसे के वे दो माला ज्यादा फेर सकें, ऐसी न करो कि वे और 15 मिनट पहले ही सो जाएं और ज्यादा देर तक सोते रहे, जी भैया वृत्ति नहीं कहलाएगी। हाँ, इसी तरह ये है, ऐसा द्रव्य देना जिससे कि उनके धर्म ध्यान में वृद्धि हो, वे ऐसा उससे फर्क पड़ेगा। और दात्री दाता के गुण होते हैं, श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, उसकी अपनी शक्ति, दान देने में आलस नहीं करता, जानता है कि क्या देना। देखो महाराज जी की प्रकृति ऐसी है उनके लिए, अरे भाई तो पानी दो तो वन रस कैसे दे रहे हैं, ठहर, ऐसा ज्ञान पूर्वक देता है। और अलुब्धता, बिना किसी ग्रीडीनेस के, अर्थात अब दे तो रहे मनो, अब थोड़ी देव पूरी, तुम्हारा तो पूरी नहीं ले रहा, बची नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कहता, पर आए देखा है आचार्य ने कि लोग जागृत हो सकता। देखो धन्य कुमार था, उसको जो है पहले जब अकृत पुण्य नाम था उसका, तो जब उसकी माँ ने कहा था कि देखो जी खीर जब दें तुम्हें, जब मुनि महाराज आ जाएं, तो उसके मन में क्या विचार था पहले, कि मुनि महाराज आ तो जाती जल्दी, वो थोड़ी सी ले लेती हूँ फिर हमें मिल जाती पूरी, देखो था कि नहीं। और फिर बाद में जैसे ही मुनि महाराज के दर्शन हुए, भी मुनि महाराज तो रिद्धिधारी थे, सो उनके दर्शन करने से उसके परिणाम बदल गए। और फिर क्या कहता है कि पूरी महाराज ले ली मैं, पूरी ले ली मैं, हमें तो अब बिल्कुल इच्छा ही नहीं खाने की। उसके पन फलस्वरूप वो धन्य कुमार हुआ था, अत्यंत पुण्य का बंद किया था, तो भाव आ सकते किसी जीव के लोलुपता के, इसलिए लिखा है। और क्षमा भाव धारण करना सब पर, और त्याग की भावना होना उस समय में, ये सब उसके दाता के गुण है। जिसके जितने गुण होंगे उसके दान में उतनी विशेषता आ जाएगी, और कुछ नहीं, देते तो सब लोग हैं, लेकिन जिसके जितने गुण दाता के होंगे उसको उतना दान देने का पुण्य ज्यादा मिलेगा। और पात्र जैसा भी है, रत्नत्रय से युक्त है, मुनि महाराज को देंगे तो उत्तम पात्र हैं, बाकी जो देश व्रती को दान दे रहे वो मध्यम पात्र हैं, और जो व्रत नहीं लिए लेकिन जिनकी वीतराग भगवान में श्रद्धा है, ऐसे सम्यक दृष्टि को दे रहे तो वो जघन्य पात्र हैं। तो पात्र के भेद से भी दान में विशेषता आती है, लेकिन किसी भी पात्र को देव अपने परिणाम तो अच्छे ही रखेंगे, चाहे उत्तम पात्र हो, चाहे मध्यम हो, चाहे जगन्नाथ पात्र इस तरह से सातवां अध्याय हुआ, आठवां अध्याय जल्दी जल्दी से शुरू कर रहे हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतवः। जो कर्मों का आश्रय होता है वो जो कर्म आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगह अन्यून प्रदेशानु प्रवेशात्म को बंधा आत्म कर्मणो हो, आत्मा और कर्मों के एक क्षेत्रावगह संबंध का नाम जिसको इंग्लिश में कहते इंटरमिगलिंग, एक साथ मिक्सअप हो जाना, जैसे दूध में पानी मिक्सअप हो जाता है ठीक वैसे ही आत्मा और कर्मों का संश्लेष हो गया, मिक्सअप हो गए वो, उसको कहते हैं बंध। वो बंध काहे से होता है? हमारे अपने परिणामों से। जब हमारे मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं तो बंद होता है अलग प्रकार से, जब हमारे असंयम के परिणाम होते तो होता, जब हम प्रमाद करते कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है उस अवस्था में भी होता, और कषाय के द्वारा तो होता ही है, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा, ये सब जो है आश्रय के हेतु हैं, बंध के हेतु हैं, इनके द्वारा आश्रय और बंध दोनों ही होते हैं। स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। बंध की परिभाषा दे दी, कषाय से सहित होने के कारण जीव जो कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं, कषायवान जीव के द्वारा। एक उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे चुंबक होती है, चुंबक जो भी चुंबकीय पदार्थ हैं वो सब उससे आकर के चिपक जाते। अगर ये समझ में नहीं आए तो ऐसा समझ लो कि कोई गर्म चीज है उसको पानी में डालो तो क्या होता, सब तरफ से वो शक करता है पूरे पानी को एकदम। ठीक इसी तरह आत्मा में जैसे ही क्रोध मान माया इत्यादि होती, ऐसे ही चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं कर्म पार्टिकल्स, उन सबको वो अपने साथ चिपका लेता है, और फिर वो अपना समय पा करके उदय में आते हैं तो उसके द्वारा फिर प्रभावित होते हैं अपन। इस तरह ये कर्म बंध की प्रक्रिया चलती रहती, बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। कितने प्रकार का बंध होता? चार प्रकार का, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विद्या। प्रकृति किसे कहते? का प्रकृति, स्वभावो प्रकृति। निम्बस का स्वभाव कटुकता, गुणस्य का स्वभाव मधुरता, ज्ञानावरणस्य का स्वभाव अर्थाओ गमः। जो अर्थ का बोध ना होने देवे वो ज्ञानावरण, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है। दर्शनावरणी की प्रकृति क्या है? जो जो कर्म हैं वे सब इस तरह से हमारे उनके अपने स्वभाव हैं, उन स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। पुद्गल वर्गनाएं जो अपने भीतर आती, कभी हम इस पर अलग से आपसे चर्चा करेंगे, मन तो होता है, अब इसके बाद कोई समय में 2-5 दिन लगेंगे। पूरी कर्म फिलॉसफी कैसी है उसको अपन समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो कि हर एक जो भी अपने कर्म बनते हैं उनकी एक 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 स्वभाव निश्चित हो जाता, उनकी क्वांटिटी माने क्वालिटी भी निश्चित हो गई, क्वांटिटी निश्चित हो जाती, फिर वे कर्म कितने समय तक अपने साथ रहेंगे इसको कहते स्थिति, और कितने समय तक फल देंगे वो सब स्थिति, ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, और फिर पोटेंशियलिटी जब उदय में आएंगे तो कितनी ताकत के हैं वो कर्म। इस तरह वो बंध के समय ही डिसाइड हो जाता है ये चारों चीजें, किस नेचर का कर्म बंधा है, कितनी क्वांटिटी में बंधा है, कितना ड्यूरेशन है, कितनी पोटेंशियलिटी है, ये सब, और फिर अपन को उसका फल भोगना पड़ता है। फल भोगने को ही अनुभव कह देते हैं, या उसकी शक्ति को कह देते हैं अनुभव, ऐसा भी कह सकते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। जो प्रकृति बंध है वो आठ प्रकार का है, आठ ही प्रकृति होती कर्मों की, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु और नाम गोत्र और अंतराय। जो ज्ञान को ढके वो, जिसके निमित्त से ज्ञान गुण ढक जाता है वो ज्ञानावरण, जिसके निमित्त से हमारे दर्शन की सामर्थ्य ढक जाती है वो दर्शनावरण, जिसके निमित्त से या जिस कर्म के उदय से अपन को सुख दुख का अनुभव होता है उसे वेदनी कर्म कहती, और जिस कर्म के उदय से अपनी श्रद्धा गड़बड़ा जाती है, अपना आचरण गड़बड़ा जाता है, वो सब मोहिनी कर्म है, सबसे खतरनाक है, विकृत कर देता है अपनी श्रद्धा को और अपने आचरण को, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी दोनों। और आयु क्या करता? भावधारणम आयु, एक निश्चित समय तक किसी एक भाव में रोके रखना, ये आयु कर्म का काम है। शरीर की रचना जिस कर्म के उदय से होती वो सब नाम कर्म है, और ऊंचे नीचे कुल में उत्पन्न होने वक्त निर्धारण करने वाला कर्म गोत्र कर्म है, और अपने दान लाभ भोग उपभोग और शक्ति इत्यादि में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। पंच नौ द्वयस्ताविंशति द्वि चतुर्दि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। आठ कर्मों के भेद प्रभेद कितने हैं? तो ज्ञानावरण के पांच भेद हैं और दर्शनावरण के नौ हैं। वेदनी तो दो प्रकार का होता, साता वेदनी या साता वेदनी, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये पांच ज्ञानावरण के पांच निद्राएं और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान कृति, ये इस तरह से नौ भेद हो गए दर्शनावरण के। और साता साता के भेद से दो प्रकार का 28 भेद, बहुत बड़ा परिवार है इनकी फैमिली मोहिनी कर्म की, जिसमें से मिथ्या सम्यक मिथ्यात् और सम्यक्, तो ये तीन दर्शन मोहिनी के हैं। 16 कषाय क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी जन्य अप्रत्याख्यान जन्य प्रत्याख्यान जन्य संजुलन जन्य, चार चार हो गई, 16 जे हो गई, नौ नौ कषाय होती हैं। हाश्रति रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदाह, नौ ये हो गए, टोटल जोड़ दो 2503 28 हो गए। चार प्रकार के आयु होती हैं, मनुष्यायु देवायु तिरंचायु और नरकायु। 42 भेद हैं, वे हमें भी याद नहीं है नाम कर्म के, वैसे 93 हैं पूरे के पूरे। अब कौन एक बार में बोलेगा, वैसे अभ्यास होना चाहिए। और उच्च गोत्र नीच गोत्र के भेद से दो प्रकार का गोत्र है, और दानांतराय लाभ अंतराय भोग अंतराय और वीर्यांतराय और कौन सा बचा, उपभोगांतराय, ये पांच प्रकार का अंतराय कर्म है। मति श्रुतावधि मन है पर्याय केवलानी ज्ञानम, ज्ञानावरण के पांच भेद हमने बताई दिए। अरे वाह जी, इतने सूत्र तो वैसे ही हो गए। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला प्रचला स्थान निगृत्यश्च, ये हम पहले ही बता चुके दर्शनावरण के भेद। सद सद वेद्य साता साता के भेद से वेदनी दो प्रकार का है। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनी आख्यास त्रिद्वि नौ षोडश भेदा सम्यक् मिथ्या तदुभयान तदुभयान कषाय कषाय हास्यरत्रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्रीपुन नपुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुनन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा, जे हम गिना चुके। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि मोहिनी दो प्रकार का है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, और दर्शन मोहिनी के सम्यक मिथ्या तो सम्यक मिथ्या, तो चारित्र मोहिनी के अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 16 भेद, अकषाय वेदनी को ही नौ कषाय कहते, उसके 9 भेद ऐसा कर लो। नारक तैरज्ञो न मानुष दैवानी नरकायु तिरंचायु मनुष्यायु और देवायु, और गति जाति शरीरांग उपांग निर्माण बंधन संघास संस्थान सौन निष्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु उपघाता परघाता तपोद्योतो श्वास विहायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस्वभग सुस्वरसु सूक्ष्म पर्याप्ति इसरादे यशा कीर्ति सेदराणी तीर्थ करत्वम चा। अब इनके अगर हम एक एक की परिभाषा बताएं तो 2-3 दिन लगेंगे, इसलिए हमने अकेले नाम पर दिए इसके। बाकी ये सब कर्म जानने के हैं, अपन कैसे कैसे कर्म करके कैसी कैसी चीजें अपन ने पाई हैं, सौ प्राय रत्ति ज्ञान में आता है केवल ज्ञान में, ये इसलिए जानना चाहिए। पर अतिरिक्त समय में अपन जानेंगे। उच्चैर नीचैश्च उच्च गोत्र और नीच गोत्र, हम परिभाषा पहले बता चुके आपके लिए। उच्च गोत्र किसे कहते हैं, जहां पर की रत्नत्रय की परंपरा चलती है वो उच्च गोत्र है, जहां रत्नत्रय की परंपरा नहीं है, जहां अच्छा आचरण नहीं होता, खोटा आचरण होता, व्यसन इत्यादि होते, वो सब नीच गोत्र है। दान लाभ भोग उपभोग वीर्यानाम, ये अंतराय कर्म के पांच भेद हैं। दान देने का भाव होते हुए भी दान नहीं दे पाना, ये दानांतराय है। लाभ होने की इच्छा है, प्रयत्न भी कर रहे कि लाभ हो, लेकिन लाभ नहीं होना लाभांतराय है। भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने पर भी प्राप्त न हो पाना, ये भोग उपभोग अंतराय है। बौद्ध धर्म करने की भावना होते हुए भी न कर पाना, ये वीर्यांतराय कर्म का उदय है। मंदिर से आए वाए वापस लौट गए, हिम्मत करके आए थे, लेकिन फिर बीच में गड़बड़ हो गई, शिखर जी तक चले गए, मनो नीचे डॉक्टर ने मना कर दी कि अब वंदना नहीं कर सकते, नहीं तो ब्लड प्रेशर और कहीं फेल हो जाए हार्ट, तो घबरा गए कि अब रेंदू नहीं कर रहे, ये क्या है, ये कर्म आ गया बीच में बहुत। आदितस्तिश्री नामंत्राय चतुर्ंशत सागरूपम कोटि कोट्या पराय स्थिति, अब तो जल्दी से हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इन सब की स्थिति बता रहे कि कौन बंधने के बाद कितनी देर तक बंधा रहता है, कितनी देर तक फल देता है। देखो आदितस्तिश्री नाम, आदि के तीन, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतरायस्य चा, अंतराय, इन सब की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 करोर में करोर का गुणा करो, इतने सागर, इतनी स्थिति बंधता है तो इतने समय, थोड़े समय के बाद उदय में आकर के इतने समय तक उदय में बना रह सकता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और वेदनी और अंतराय कर्म, सब ततिर मोहिनी, सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म बंधता है। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, एक बार बंधे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल दे सकता है। गोत्र कर्म विंशतिर नाम गोत्र यो हो, नाम और गोत्र कर्म बंधता है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंध सकता, उत्कृष्ट। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषा, आयु कर्म अधिक से अधिक बनता है तो 33 सागर, या तो देवायु या कि नरकायु 33 सागर की बनेगी। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म का जघन्य अगर बनता है तो 8 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है, इतना। ये कहाँ बनते हैं, जघन्य, 10वें गुण स्थान बनता है, ऐसे नहीं समझना कि अपन को बन जाएगा, वेदनी की जघन्य स्थिति के सवेरे करो संजा को उदय में आ जाएगा, ऐसा अपन को नहीं बनता, अपन को बड़ा बनता है, जो 10वें गुण स्थान में कषाय से रहित जीव है उनके लिए बनता, इतनी माने सवेरे कोई कर्म बांधा और शाम को उदय में आ गया और फल दे के चला गया, इतना भी हो सकता। नाम गोत्र और अष्टौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है कुल, शेषानाम अंतर मुहूर्ता, बाकी 5ों कर्म अगर कम से कम बने तो 1 अंतर मुहूर्त के लिए बनते हैं बस, उसके बाद। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कितों भी स्थिति बांध लो, अगर अपन तपस्या करें तो बस सब जो है अंतर मुहूर्त में नष्ट हो सकती है, ये ध्यान रखना, नहीं तो घबरा जाओगे स्थिति देख के कि अब जी हम अपने बांधे कर्म कैसे काट, ये फल अनिवार्य नहीं है कि ये फल पूरा देवे, हम फल देने से पहले ही उनको सत्ता में ही, जैसे कि हमने पेड़ लगाया उसमें कच्ची आम फर गए, अब कच्ची आम हमें जैसे खाना हम वैसे खाएंगे, हम अगर उसमें शक्कर मिला के लौंजी बना के खाना चाहें तो खा सकते, और हम अगर चाहें तो उसकी चटनी बना के खा सकते, तो ऐसे ही कर्मों की भी चटनी बनाई जा सकती है, ऐसा ज्ञान ऐसा तो नहीं, हमने बांध ली इसलिए हमको खाए, हमने आम का पेड़ लगाया इसलिए हमको खाने पड़ेंगे, नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा उसका द्रव क्षेत्र काल भाव के अनुसार, यही तो है, नहीं तो फिर कर्म फिलॉसफी समझने का मतलब क्या है, इसको समझ करके कि अपने बांधे कर्म हमें भोगना अनिवार्य नहीं है, हम अपने बांधे कर्मों को सत्ता में और उनको घटबड़ कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उदय में आए तो समता रख करके नष्ट कर सकते हैं। विपाकोनुभव, ये स्थिति बंध की चर्चा पूरी हो गई, अब विपाक माने विभिन्न प्रकार के फल देने की सामर्थ्य का नाम अनुभाग बंध है। स यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा ही उसका फल मिलता है, ज्ञानावरण है तो ज्ञान को आवरण करने वाला है, इस तरह। ततस्य निर्जरा, कर्म अपना फल दे करके कहाँ चले जाते, कहते झड़ जाते, जैसे कि पेड़ में फल लगते हैं और समय पूरा होके पक कर के नीचे टपक जाते, ऐसे ही कर्म बंधते हैं, अगर हम कुछ नहीं करें तब भी वे अपनी स्थिति पूरी कर करके अपने आप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे अपना कुछ काम सटता नहीं है, ऐसा तो संसार बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए तपस्या के द्वारा कर्मों को काटना चाहिए। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्र अवगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंद प्रदेशा, कर्म कैसे आते हैं, कितनी क्वांटिटी में आते हैं, तो 6 बातें होती हैं, आने वाले सब कर्मों की प्रकृति, नाम प्रत्याह, प्रति समय विभिन्न प्रकार से कर्म सर्वतः सब तरफ से आते हैं, योग विशेषात जैसा मन वचन काय होगा वैसे आएंगे। सूक्ष्म होते हैं, एक क्षेत्र अवगाह जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं कर्म भी स्थित हैं, और कहीं दूसरी जगह से आना नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि वहां है कर्म वहां से आ जाएंगे, वे तो जहां आत्मा के प्रदेश वहीं, वो तो सिर्फ इंटरमिगल हो जाते, वो उससे मिक्सअप हो जाते, बस उतना ही। सर्वात्म प्रदेशेषु, सब आत्मा के प्रदेशों में कर्म बंधते हैं, और कितनी मात्रा में, अनंतानंत प्रदेशा। ये छह विशेषताएं हैं प्रकृति प्रदेश बंध की। इस तरह से निरंतर कर्म बंधते रहते हैं, डेढ़ लगी रहती, उदय में आते हैं, नए बनते रहते हैं, कभी भी खाली नहीं होता। जैसे गृहस्थी में कोई सामान अपन ने रख लो है, अबे चार दिना को बाकी बचो है, लेकिन हल्ला मचाओ शुरू हो जात, खत्म हो गओ, खत्म हो गओ, एकदम खत्म हो जाए, जब थोड़ी दिखेंगे जो डब्बा जब खत्म होगा, नहीं, चार दिन पहले से उसमें चार दिन का पड़ा है, उतने में और आकर के रख जाता है, ड्योड़ लगी रहती है। जैसे घर गृहस्थी में सामान की ड्योड़ लगी रहती है, ऐसे ही समझना अपने भी कर्म उदय में आते रहते, नए बंधते रहते, उदय में आते रहते, हमेशा बने रहते। सद्वेद सुवायुर नाम गोत्रानी पुण्यम और अतो न्यत पापम। सातावेदनी शुभ आयु तीन है, और शुभ नाम और शुभ गोत्र उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं, और बाकी सब पाप प्रकृतियां हैं। इस तरह से हमने जैसे तैसे करके और इसको पूरा कर दिया। ऐसा हम करते नहीं है बेईमानी का काम, लेकिन जल्दी जल्दी जी हम इस पर लिख के ले आए थे, आज महाराज का वो नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हो गया। कोई बात नहीं, कल दो भजन सुन लेंगे अपन। परीक्षा की जानकारी देना है कि परीक्षा से घबराना नहीं आप, इतना। जितने लोग अभी बैठे हैं वे सब बहुत ठाट के साथ में परीक्षा, कोई ज्यादा कठिन परीक्षा नहीं होती। एक एक कागज आपके हाथ में दे दिया जाएगा, अपने हाथ से ले लेना एक ठो कागज, या अपने ही खुद लेके आ जाना घर से एक ठो कागज, उस पे ऊपर अपना नाम लिख दिया, अपनी उम्र लिख दी। उम्र लिखने से ही अच्छा रहेगा कि अब बड़े बूढ़ी भी दे रहे, उनको कमती याद होता, छोटी बारह हो जल्दी याद हो जाता। हाँ, अब देखना तो अब दो बराबर कैसे, तो उम्र लिख देंगे तो अलग अलग कर लेंगे, ये बड़ी उम्र वाले, ये बीच वाले, ये और ये बच्चे, ऐसा कर दिया। अब 30 प्रश्न बना देंगे या 40 बना लेंगे छोटे छोटे से, सो एक नंबर डाला, उत्तर भर लिखना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता को क्या कहते हैं, सो धीरे से लिख दो। मोक्ष मार्ग बाजू वाले को ने देखियो, नकल पट्टी हो जाएगी, है कि नहीं। मोक्ष मार्ग इतना ही लिखना, तत्व कितने होते हैं, तत्व का श्रद्धान करने को क्या कहते हैं, तो 7 लिख दिया, और सम्यक दर्शन सही उत्तर, इतना तो काम करने जी हमने बता दिए, और बता सकते हम हैं इससे क्या। अपने को ज्ञान प्राप्त होना मुख्य, तो हमारे बताने के बाद भी आपको याद रहो आवे तो जी सौभाग्य है। हमने बता भी दिया और आपको याद रहा आया, ये भी सौभाग्य। दो नंबर मिल गए, हमारा का हुआ कछू नहीं, कौन हमारे पॉकेट से चले गए, आपने आपको याद है इसलिए आपको दो नंबर मिल गए। और कापी भी आपको अपने हाथ से ही जांच लेना है, कहीं कुछ कहीं नहीं जाना, बाद में हम पूरे 30 के 30 सही उत्तर बता दे, सो अपनों निशान लगा लो कि जो सही और तुरंत ही जोड़ के और रख के हमारे पास में दे दिया, खत्म। 20-30 में से कितने सही आए, 25 आए तो पीठ थपथपाओ अपने हाथ से कि 25 अपने सही आ गए। हाँ, उसमें कोई किसी से कह भी थोड़ी जाने कि हमारे इतने कम आए और इनके ज्यादा आए और फलाने आओ, जो राग द्वेष थोड़ी करना अपने लिए। परीक्षा जो है परिणामों की निर्मलता के लिए, संकलेश के लिए कदापि नहीं है। नहीं बन रहो आए तो संकलेश करने की आवश्यकता नहीं है, जितनों बन रहो है उतनों तो बन रहो कि नहीं बन रहो। चार दिना में कोई पंडित नहीं बन सकत, हाँ कितनों भी हो भाई। अब 30 में से हो सकता 4 सही बने, मगर भी 4 सही तो बने, जो 26 गलती हो गए भी ध्यान ठीक कर ले। अबे जो 4 सही बने उसकी तो प्रशंसा करो, अभी 4 बन गए जा कहो न, बिल्कुल ही नहीं बनती कहो, बुद्धू है सब जने को है कौन खो इतनी समझ, ऐसा विचार करके। और सब लोग देखें, देखना कि देखो कितने अपन से बने, कितनों अपन ने याद करो, इतने दिन में क्या सीखा अपने, 10 दिन सार्थक हुए कि नहीं। हम तो कहते 30 में से एक प्रश्न सही बन गया तो समझ लो सार्थक हो गया, एक बात तो याद है कम से कम, सब भूल गए एक तो याद रही, एक तो सही हो गई, ऐसा विचार करके परीक्षा देना तो बहुत आनंद आएगा। आधे घंटे लगेगा, एक मिनट मिलेगा एक प्रश्न के जवाब के लिए, और जवाब भी कितना, आधे मिनट का उत्तर है उसको भी एक मिनट, तो ऐसा हमने पहले से बता दिया आपको है, और प्रश्न तो आसानी से हो जाएगा है। कितने बजे? 6:30 बजे। मैंने 6 बजे से अपन थोड़ा सा तत्काल सूत्र कर लेंगे, 6:30 से शुरू करेंगे, 7 बजे तक हो जाएगा, और 5 मिनट में सब अपने अपने चेक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबसे बढ़िया। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, रहे भावना सरल सत्य बने जहां तक इस जीवन।